जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिब्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद्भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिब्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। व्रज भूमि श्री वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जाए। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जाए। गंगा देवी जमुना देवी की जाए। तुलसी देवी भक्ति देवी की जाए। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जाए। बृहत मृदंग ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जाए। श्री राधा वृंदावन विहारी की जाए। श्री राधा वन विहारी की जाए। श्री राधा मदन मोहन की जाए। शशिनंदन गौर हरि की जाए। श्री वृंदावन धाम की जाए। यमुना महारानी की जाए। श्रील प्रभुपाद की जाए। श्रील गुरुदेव की जाए। ऑल ग्लोरियस टू द असेंबल्ड डिवोटीज। ऑल ग्लोरियस टू द असेंबल्ड डिवोटीज। All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga and all glories to you, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के इस भागवत सत्र में आप सबका स्वागत है। हमें कहा गया कि रविवार के प्रातःकाल बैठक में हिंदी में कथा होती है, तो आप सबको सुनाई पड़ रहा है पीछे? हाँ, सबको स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ रहा है? हाँ, ठीक। तो छठे स्कंद श्रीमद् भागवत के दूसरे अध्याय का सातवां श्लोक है। ये दूसरा अध्याय का शीर्षक है विष्णु दूतों द्वारा अजामिल का उद्धार। सातवां श्लोक। अयम ही कृत निर्वेशो जन्मकोट्यम हसामपि यद व्याजहार विवशो नाम स्वस्त्ययनम हरे। अयम ही कृत निर्वेशो जन्मकोट्यम हसामपि यद् व्याजहार विवशो नाम स्वस्त्ययनम हरे। अयम हि कृत निर्वेशो जन्मकोट्यम हसामपि यद् व्याजहार विवशो नाम स्वस्त्ययनम हरे। अयम हि कृत निर्वेशो जन्मकोट्यं हसामपि यद्व्याजहार विवशो नाम स्वस्त्ययनं हरे। उच्चारण कीजिए। जय हो। ये पहले बार हुआ कि दो वैष्णवों ने एक ही समय में प्रारंभ भी किया और अंत भी किया। बहुत सुंदर। प्रभुपाद सेड यू कैन शो योर लव फॉर मी बाय हाउ यू कोऑपरेट। बहुत सुंदर लगा। आगे उच्चारण कीजिए। माताएं अयम यह व्यक्ति अजामिल ही निसंदेह कृत निर्वेशः सभी प्रकार के प्रायश्चित किए हैं, जन्म जन्मों के कोटि करोड़ों अमहसाम पाप कर्मों के लिए, अपि भी यत क्योंकि व्याजहार उसने उच्चारण किया है, विवशः असहाय अवस्था में, नाम पवित्र नाम स्वस्त्ययनम मोक्ष का साधन, हरे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा, शिल प्रभुपाद जी की अनुवाद। अजामिल पूर्व में ही अपने समस्त पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित कर चुका है। वास्तव में उसने न केवल एक जीवन में किए गए पापों का प्रायश्चित किया है, अपितु करोड़ों जीवनों में किए गए पापों के लिए भी किया है, क्योंकि उसने असहाय अवस्था में श्री नारायण के नाम का उच्चारण किया। यद्यपि उसने शुद्ध रीति से यह उच्चारण नहीं किया, किंतु उसने अपराध रहित उच्चारण किया है, इसलिए अब वह पवित्र है और मोक्ष का पात्र है। तात्पर्य, यमदूतों ने अजामिल की केवल बाह्य स्थिति पर ही विचार किया था, क्योंकि वह आजीवन अत्यधिक पापी था, अतः उन्होंने सोचा कि उसे यमराज के पास ले चलना चाहिए। वे यह नहीं जानते थे कि वह अपने समस्त पापों के फल से मुक्त हो चुका था, इसलिए विष्णु दूतों ने आदेश दिया कि चूंकि उसने मृत्यु के समय श्री नारायण नाम के चार अक्षरों का उच्चारण किया था, अतः वह सारे पाप फलों से मुक्त कर दिया गया था। इस संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने स्मृति शास्त्र से निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किए हैं। नामनो ही यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी नरः। बृहद विष्णु पुराण का श्लोक है, हरि का एक पवित्र नाम लेने मात्र से पापी मनुष्य जितने पाप कर सकता है उससे अधिक पापों के फल का निराकरण कर सकता है। अवशेनापि यन्नामनी कीर्तिते सर्व पातकै पुमान विमुच्यते सद्यः सिंहस्त्रस्त्यै मृगर इव। यदि कोई असहाय अवस्था में या अनिच्छा से भी भगवान नाम का उच्चारण करे तो उसके पापमय जीवन के सारे फल उसी प्रकार मिट जाते हैं जिस प्रकार सिंह की दहाड़ से सारे छोटे छोटे पशु डरकर भाग जाते हैं। ये गरुड़ पुराण का श्लोक। अब स्कंद पुराण से श्लोक उद्धृत करके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं यहां पर, जो शिल प्रभुपाद जी प्रस्तुत कर रहे हैं। सकृद उच्चारितम येन हरिरित्यक्षर द्वयम् बद्ध परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। हरि के दो अक्षरों ह तथा री, कौन से दो अक्षर? हरि के दो, क्योंकि ये पूरे क्लास का सारांश यही है, ये दो अक्षर। हरि के दो अक्षरों ह तथा री के एक बार उच्चारण करने से मनुष्य का मोक्ष का मार्ग सुनिश्चित हो जाता है। हरि हरि, ये कुछ कारण है जिससे विष्णु दूतों ने यम दूतों को अजामिल को यमराज के न्यायालय में ले जाने से मना कर दिया। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। आप सबका इस प्रातःकालीन बैठक में स्वागत है। वैसे हमारा यहाँ इस एक हफ्ते के लिए आना कोई अन्य कार्य से बना था, परंतु राधा वृंदावन बिहारी के असीम कृपा से उन्होंने वाणी घसीट ली। हम वैसे कोई और कार्य के लिए आए थे, परंतु भक्तों के आदेश अनुसार, भगवान की इच्छा अनुसार, प्रभु ने हमारी वाणी को उनके नाम के महिमा में यहाँ आप सबके समक्ष उपस्थिति कर दी। तो हम प्रयास करेंगे टूटी फूटी कुछ दो तीन बातें कहने का। इसमें यदि कोई शास्त्र सम्मत बात आपको अच्छी लगे तो आप उसको स्वीकारें और जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करें, और यदि आपको लगे कि इसमें कोई किसी भी दृष्टिकोण से चूक है, इसमें त्रुटि है, सिद्धांत के दृष्टिकोण से, व्याकरण के दृष्टिकोण से, भाषा के दृष्टिकोण से, रस सिद्धांत के दृष्टिकोण से यदि कोई स्खलन है तो आप कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। आज का जो विषय है ये नाम की अपार महिमा है। हम कोई नाम जापक नहीं है, हम कोई सिद्ध नाम सिद्ध महापुरुष नहीं है कि नाम के विषय में दो चार बातें कहें, परंतु क्योंकि भागवत हमारे महाराज जी कहते हैं कि भागवत के श्लोकों का उच्चारण करना यही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जन्मांतरे कृतम पुण्यम तदा भागवतम लभेत। आप सबको मैं ये कहना मानो सूरज को दीपक दिखाने बराबर है। ये माधव गोपाल प्रभु बैठे हैं, गौरांग दर्शन प्रभु बैठे हैं, सब वरिष्ठ प्रणवानंद प्रभु बैठे हैं। आप सबके कथा से हजारों लाखों भक्त पोषित होते हैं, तो आप सबको मैं कुछ कहना मानो सूरज को दीपक दिखाने बराबर है। परंतु क्योंकि दामोदर मास में सबको एक दीपक दिया जाता है और सबको अधिकार होता है कि अपना दीपक प्रभु को अर्पित किया जाए, तो इसी भाव से हम अपना दीपक रूपी वाणी आज, दीपक भी नहीं कह सकते परंतु उदाहरण के दृष्टिकोण से आज अर्पित करने का प्रयास करेंगे। वो रस्ते में बूझ जाए तो आप क्षमा कर दीजिए। नाम की अपार महिमा भागवत में वर्णित है। कहां से प्रारंभ किया जाए? भगवान के भिन्न भिन्न अवतार हैं, शालिग्राम अवतार हैं, विशेष धाम अवतार हैं, गिरिराज गोवर्धन अवतार हैं, गुरु अवतार हैं, प्रभु की कृपा शक्ति तुलसी के रूप में अवतरित होती है, माधव तिथि भक्ति जननी एकादशी के रूप में अवतरित होती है, प्रभु शास्त्र के रूप में अवतरित होते हैं, भिन्न भिन्न वैदिक मंत्रों के रूप में अवतरित होते हैं, परंतु इन सभी अवतारों में सर्वश्रेष्ठ अवतार यदि है तो नाम अवतार है और इसमें कोई दो राय नहीं। कोई भी प्रकांड शास्त्र मर्मज्ञ पंडित इस बात को नहीं काट सकता। हम नहीं कह रहे, ये नामाचार्य हरिदास ठाकुर अपने वाणी से सिद्ध किए हैं, अपने जीवन से सिद्ध किए हैं, अपनी जीवन शैली से सिद्ध किए हैं। जो नामाचार्य हरिदास ठाकुर के विरुद्ध खड़े हुए वो पक्ष पूर्ण रूप से गल गया, पिघल गया, पराजित हो गया। और नामाचार्य हरिदास ठाकुर का उदाहरण 500-600 साल हो गए, आज भी प्रज्वलित रूप में विराजमान है। शालिग्राम भगवान को आप सूर्यास्त के बाद सेवा नहीं कर सकते। आपको भूखे प्यासे होकर खाली पेट सेवा करना ये उचित है। कोई अन्न भक्षण करके फिर ऑल्टर पे चले जाए और शालिग्राम को स्पर्श करे, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण में वर्णन है भिन्न भिन्न स्थानों में कि जिस प्रकार वज्रपात सिर पे यदि हो तो कैसे शरीर में पीड़ा होती है, उस प्रकार प्रभु को पीड़ा होती है। प्रभु की वाणी है, यदि कोई अन्न पाकर शालिग्राम को स्पर्श करे तो प्रभु कहते हैं मुझे उतनी पीड़ा होती है। चलो अगर कोई कर भी ले, पहले तो दीक्षा होनी चाहिए, गुरु मंत्र से ब्राह्मण दीक्षा अनिवार्य है, उसके बिना कोई कर नहीं सकता। और करे तो भी मंदिर के जो ग्रह है वही कर सकते हैं, कहीं और नहीं। घर में भी उचित पवित्र स्थान में ही हो सकता है। कोई यदि ये कहे कि मैं अपने जहां सो रहा हूं या शौच कर रहा हूं, स्नान कर रहा हूं, भोजन कर रहा हूं, वहां जाकर शालिग्राम की सेवा, ये तो निकृष्ट प्रवृत्ति हुई, कली का प्रहार हुआ। उसी प्रकार शास्त्र को बिना पूजे, बिना सम्मान दिए कोई पढ़े तो विद्वत्ता तो प्राप्त कर सकता है, पर शास्त्र में जो वैज्ञानिक बातें हैं, जीवन में उतारने वाले योग्य जो बातें हैं, परिस्थिति जब चिमटी काटे तब वो शास्त्र बाहर नहीं आएगा, व्यासपीठ पर आ जाएगा। हम अनुभव से कह रहे हैं, व्यासपीठ पर एक दो श्लोक रट्टे लगा कर कंठस्थ करके बोल सकते हैं, परंतु जब परिस्थिति रूपी चिमटी लगे जो आ निकलती है वो शास्त्र सम्मत नहीं निकलेगी, क्योंकि ये पूर्ण रूप से हम पचाए नहीं हैं। तो शास्त्र के विषय में, शालिग्राम के विषय में, माधव तिथि भक्ति जननी एकादशी के विषय में, वृंदावन धाम के विषय में, धाम में भी अपराध हैं, कई बातें हैं जो धाम में नहीं करनी चाहिए, यदि उचित मनोवृत्ति से हम पर्यटन ना करें तो केवल भ्रमण कहा जाता है, यात्रा नहीं। भगवान के भिन्न भिन्न अवतार हैं, परंतु सबसे सुरम्य, सबसे सुलभ, सबसे सरल, सबके लिए लागू पड़ने वाला अवतार नाम अवतार है। नाम को कोई भी व्यक्ति, किसी भी जाति, अरे जाति तो छोड़ दीजिए, गजेंद्र ने जो उदाहरण प्रस्तुति की, हाथी शरीर में होकर प्रभु को पुकारे, और ऐसा नहीं कि वो निष्फल गया। श्री संप्रदाय के एक वरिष्ठ आचार्य लिखते हैं, नारायण चार अक्षर होने से पहले प्रभु प्रकट हो गए। कहते हैं कि गरुड़ के पीछे आरूढ़ होकर प्रभु जब यात्रा करते हैं, हमेशा आचमन करते हैं, पादुका धारण करते हैं, मुकुट होता है, अंग वस्त्र होता है, फिर बैठकर फिर गरुड़ जी को कहते हैं चलो, जिस प्रकार बटन दबाते हैं वैसे गरुड़ जी को कहते हैं अब चलो। परंतु जब गजेंद्र ने पुकारा, ना सिर का मुकुट, ना ऊपर का अंग वस्त्र, ना चरण की पादुका, ना आचमन, प्रभु ने मानो सभी विधि को उल्लंघन किया, क्योंकि वहां राग और पुष्टि का विषय है। गजेंद्र जो वरिष्ठ भक्त हैं, प्रेम से पुकारते हैं, यत्र गायंती मद्भक्ता या मद्भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। हरि सदा वसे तत्र, ऐसा नहीं कि आके चले जाते हैं, हरि सदा वसे तत्र, ऐसा नहीं कहा गया कि आ सकते हैं। वसेत शब्द प्रयोग है, विधिलिंग लकार माने आएंगे, अवश्य आना होगा, और केवल आते नहीं, वास करते हैं, और केवल एक दो दिन के लिए नहीं, हरि सदा। शब्द चयन कैसे किया है देखिए नीलकंठ गोस्वामी ने केवलाष्टकम में, हरि सदा वसे तत्र, कहां? यत्र भागवता जना गायन्ति भक्ति भावेन हरेर नामैव केवलम। तीन बातें कही गई, पुकारने वाला शुद्ध भक्त हो, पुकारने वाला जो माध्यम है वो नाम हो, और वो भी पुकारने वाला जो माध्यम में जो भाव हो, गायन्ति भक्ति भावेन। भक्ति भाव से नाम का उच्चारण जब यत्र भागवता जना शुद्ध भक्त करते हैं, तो प्रभु वहीं वास करते हैं। गजेंद्र के जीवन में देख लीजिए, कितने कितने भक्तों के जीवन में, अन्य अन्य जाति में, अन्य अन्य कुलों में, अन्य अन्य योनियों में, किन किन लोकों में नाम अवतार सर्वसिद्ध है। कोई भी व्यक्ति, दीक्षित हो अदीक्षित हो, ब्राह्मण हो अब्राह्मण हो, मनुष्य हो नारी हो पुरुष हो, नपुंसक हो, कोई भी क्यों ना हो, कहीं भी क्यों ना हो, कैसे भी क्यों ना हो, नाम अवतार। गोपाल गुरु गोस्वामी के जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कथा है, इससे यह सिद्ध होता है, एक वैष्णव जिह्वा धर के, रसना धर के शौच क्रिया के लिए जा रहे थे। छोटा सा गोपाल पूछता है, अरे आप जिह्वा धर के क्यों जाते हो? तो वैष्णव कहते हैं, क्या करें, प्रभु का नाम इतना अमृतमय है कि जिह्वा पर रुकता नहीं, और शौचालय इतना निकृष्ट स्थली है, इतना स्थल है, अपवित्र स्थल है, वहां जाकर नाम उच्चारण करे तो पवित्र नाम है और स्थान अपवित्र है, मुझे ये उचित नहीं लगता, और नाम का अभ्यास रहा तो जिह्वा चलती है। ऐसा नहीं कि भक्त नाम जप रहा है, प्रभु का नाम अवतार नृत्य कर रहा है इस मंच पर, जिह्वा रूपी मंच पर। देखिए दो प्रकार के नाम उच्चारण है, जैसे कोई रसगुल्ला पाए, इसके भी दो प्रकार हैं। एक तो रसगुल्ला पाने से पहले रसगुल्ला, हा रसगुल्ला, ये एक आकार हुआ, और दूसरा रसगुल्ला पाने के ये दूसरा आकार। तो दो प्रकार के आकार हुए, एक तो रसगुल्ला मिलने से पहले का जो रसगुल्ला, अथवा दूसरा रसगुल्ला पाने के इतना मधुर। तो नाम के भी इस प्रकार दो ध्वनियां हैं, एक तो साधक अवस्था, एक सिद्ध अवस्था। साधक अवस्था रसगुल्ला रूपी प्रेम पाने से पहले नाम उच्चारण आहा चल रहा है, और सिद्धों में प्रेम प्राप्त किए, रसगुल्ला का रस चख लिए, इसलिए आहा करके नाम उच्चारण हो रहा है। देखने पर ऐसा प्रकट होता है, ऐसा लगता है कि दोनों उच्चारण कर रहे हैं, साधक भी नाम उच्चारण कर रहा है, सिद्ध भी नाम उच्चारण कर रहा है, पर दोनों का जो रसास्वादन है उसमें भेद है। एक साध्य प्राप्त करने के लिए साधन कर रहा है, और दूसरा साध्य प्राप्त करने के बाद रसास्वादन में आकार के रूप में नाम उच्चारण कर रहा है। एक में नाम को धरने का प्रयास, और दूसरों में नाम का जीव धरने का प्रयास, दोनों अलग। तो एक में जब प्रयास होता है तब नाम छूट सकता है, बार बार स्मरण करना पड़ता है कि देखो एक घंटा हो गया नाम चला नहीं। और सिद्धों में अब कैसे छूटे नाम रट लागी, नाम की रट लग जाती है जिह्वा पर, अब कैसे छूटे भाई, परेशानी है, कहीं भी जाओ तो जिह्वा चलती है। कृष्ण प्रिया देवी की प्रसिद्ध कथा में वही बात हुई, कथा में भागवत में बैठकर नाम जप रही है, वक्ता को बड़ा गुस्सा आया, अरे नाम तो कहीं भी जपा जा सकता है पर कथा में ध्यान दो। पर क्या करे, कृष्ण प्रिया देवी वो साधक अवस्था में नहीं थी जहां रसगुल्ला से पहले आकार चलता है ना, ये सिद्ध अवस्था में थी, प्रेम नाम प्रेम रूपी रसगुल्ला को पाकर आकार चल रहा है, आस्वादन चल रहा है, और उसमें वो नाम को नहीं धरी है, नाम जिह्वा को धरा है, तो करे क्या, ऐसी अवस्था में हो जाए। श्रील प्रभुपाद जी को एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि नाम से क्या आप पाना चाहते हो, नाम साधन से साध्य क्या है, श्रील प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, बाय चैंटिंग वी एस्पायर टू चैंट फॉर एवर। हरिनाम करने का साध्य ये है कि वो दिन आ जाए कि हरिनाम निरंतर चले, रोम रोम रग रग से हरिनाम चले, करोड़ों करोड़ों हरिनाम चले। एक बड़े राम भक्त थे, उन्होंने मानो अरबों खरबों राम नाम जपा, वो अन्य संप्रदाय के थे, श्री राम जय राम जय जय राम जपते थे, सिद्ध जो विजयी मंत्र है राम नाम जपते थे। मरण अवस्था आई, आजीवन नाम जपे, मानो इतना कि उनके संप्रदाय में भी सब आते थे उनका दर्शन करने के लिए कि सिद्ध नाम सिद्ध महापुरुष, राम नाम का प्रत्यक्ष स्वरूप। मरण अवस्था में उनको पूछा गया, आप इतना नाम जपे आपने क्या पाया, रो रोकर कहते हैं जितना अमृतमय प्रभु का नाम है उतना हम जप ही नहीं पाए, हे प्रभु एक और जीवन दे दो, हे प्रभु राम आपके दो अक्षर इतने मधुर है नाम अक्षर, जितना सुंदर आपका नाम है उतना तो मैं जप ही नहीं पाया, एक और जीवन दे दो मैं और प्रयास करूंगा। श्रील प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी का उल्लेख करते हैं और कहते हैं तुंडे तांडिविनी रतिम श्लोक का, तुंडावली लब्धे इत्यादि श्लोक वहां उल्लेख करके प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इसलिए भक्त का एक ध्येय होता है, एक साध्य होता है, एक इच्छा होती है कि प्रभु लाखों करोड़ों जिह्वा दे दो और अरबों खरबों कर्ण इंद्रिय ताकि निरंतर मैं आपका नाम रटू और निरंतर इसी नाम का ध्वनि श्रवण करूं, इसके अतिरिक्त मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। तो इस प्रकार नामावतार कितना सरल है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी कैसे भी, अच्छा गा के उच्चारण कर सकता है, जप के उच्चारण कर सकता है, मुख में रख सकता है, ऊंचे कंठ का कह सकता है, भिन्न भिन्न ध्वनियों में भिन्न भिन्न स्वरों में रागों में उसको बद्ध करके कीर्तन गा सकता है, नगर कीर्तन कर सकता है, मंदिर में कीर्तन कर सकता है, ओष्ठ स्पंदन मात्र ना, अच्छा कहीं ध्वनि ना आए केवल ये भी मानते हैं प्रभु, अच्छा कहेंगे अरे किसे कोई जानता नहीं कि ये नाम जप रहा है कि नहीं जप रहा है, इसलिए तो प्रभु सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः, प्रभु अंदर बैठकर नोट करते हैं, ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि केवल हम नोट्स लेते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्य हम, अगर भक्त प्रभु की गाथा नोट्स लिखते हैं तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते से भक्त कितना नाम जपता है प्रभु बैठकर नोट लिखते हैं, और वो एक नाम इतना सर्वसमर्थशाली। यहां अजामिल की कथा देखिए, यमदूत घसीट कर ले जा रहे हैं, वो एक नाम इतना सर्वसमर्थशाली, खड़ा हो गया वो नाम। कोई कहेगा कि विष्णुदूत आए, एक टीकाकार लिखते हैं विष्णुदूत आने से पहले चार अक्षर नारायण नाम के चार अक्षर चार दूतों में आ गए, नारायण चार विष्णुदूत आकर चार चार भुजाओं के साथ, हम देखते हैं नाम जापक को तुम कैसे ले जाते हो। अरे नाम जापक ये तो दुष्ट दानव है अजामिल, बोले कैसे दुष्ट दानव, भाई अवस्था से तुम देख रहे हो दुष्ट दानव है, इसने नारायण नाम उच्चारण किया उसके बाद कुछ कहा नहीं, सब पाप भस्म हो गया, अभी हम देखते हैं नाम जापक को तुम कैसे ले जाते हो यमराज के न्यायालय में। शालिग्राम की सेवा में त्रुटि हो सकती है, मंत्र उच्चारण करना पड़ता है, मंत्र उच्चारण से पहले भूत शुद्धि मंत्र बोलनी पड़ती है, वो कंठस्थ करते करते काफी दिन चले जाते हैं, अच्छा उसके पहले बाहर होकर पूर्ण आचमन करना पड़ता है, केवल केशवाय नमः नारायण नहीं, अंग स्पर्श करके अंगन्यास करन्यास करना पड़ता है, ये सीखते सीखते प्रभु आप मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। भागवत पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो, किसी को भाषा आनी चाहिए, संस्कृत का उच्चारण आना चाहिए, फिर तो कुछ तो पढ़ेंगे। पाठशाला जाने की आवश्यकता है, अच्छा नेत्र की आवश्यकता है। यहां तो नाम अवतार में कोई भाषा की आवश्यकता नहीं, नेत्र की भी आवश्यकता नहीं। बैठे कहीं वृक्ष के नीचे बैठे हैं, नाम जप रहा है, बस जीवन सफल। कितनी अद्भुत बात, कितनी अद्भुत बात। चैतन्य भागवत में प्रभुपाद जी एक भक्त को कहते हैं, चैतन्य भागवत का उल्लेख करके, अगर कोई दो प्रकार के लोग हैं, एक मुची हैं और एक शुची हैं। मुची माने मोची, शुची माने ब्राह्मण या उच्च वैष्णव इत्यादि। प्रभुपाद जी कहते हैं जो मुची है वो शुची होए यदि कृष्ण भजे, और जो शुची है वो मुची होए यदि कृष्ण त्यजे। कृष्ण नाम को त्यागो, बड़े से बड़ा ब्राह्मण मुची हो जाता है, और यदि कृष्ण नाम निरंतर चले जिह्वा पर, कोई भी कहीं का भी हो, चर्मकाल कुल में भी उत्पन्न हो, कोई मोची भी क्यों ना हो, वो उत्कृष्ट वैष्णव कहलाता है। पूरे भागवत में कितने श्लोक हैं, आप सबको श्लोक सुनाकर प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं, सब पूर्ण मतलब पूर्ण रूप से समर्पित ब्रह्मचारी भक्त हैं, तो आपको ये सब कहने की आवश्यकता नहीं, परंतु नाम की महिमा कहां से कहां गाया जाए। एक वरिष्ठ भक्त थे, ये श्रीपाद वल्लभाचार्य जी के अनुयायी, उसी संप्रदाय में, पुष्टिमार्ग संप्रदाय में। इनकी जीवन गाथा में, इनके नाम निष्ठा के विषय में सुन लीजिए, बहुत प्रेरणा मिलती है। जब बाल्यावस्था में थे तो पाठशाला गए, ग्रामीण पाठशाला, गांव में जो पाठशाला होता है वहां गए, तो एक दिन परिस्थिति ऐसी खड़ी हो गई कि चोरी हो गई उसी वर्ग में, किसी ने किसी के मनो बैग से कुछ चुरा लिया। शिक्षक महोदय तक चली गई, बात चली गई, बोले बोलो किसने चोरी की। तो आगे जाकर ये जो भक्त बनेंगे साधु, ये इस पाठशाला में बाल्यावस्था में पढ़ते थे, तो सबने उंगली इन पर की और कहा कि इन्होंने चोरी की। वैसे तो ये निर्दोष थे, चोरी हुई थी ये भी नहीं पता इनको, सबने उंगली करके कह दी कि ये चोर है। शिक्षक महोदय आए, छड़ी उठाई, उसे चोरी की तुमने, ये व्यक्ति कहा नहीं, बिल्कुल नहीं चोरी की। शिक्षक महोदय ने पुनः पूछा, सच बताओ चोरी की। अब ये बच्चा चुप हो गया, कुछ नहीं कहा। शिक्षक महोदय को लगा चुप है मतलब दोषी है, इसने चोरी की। ले छड़ी उठाई, ऐसे रपा रप देकर पूरा रंग बदल दिया शरीर का। बच्चा खड़ा है, मार खा रहा है, खड़ा है। वैसे तो हम ये नहीं कह रहे हैं अच्छी बात है बुरी बात है, हम आप उस दिशा में ना ले जाएं। ये ग्रामीण कथा है, जो सत्य कथा है उसको यथारूप हम प्रस्तुति कर रहे हैं। तो शिक्षक महोदय ने बहुत पीटा बच्चे को, पीटते पीटते जिसने वास्तविक चोरी की वो बच्चे का हृदय द्रवित हुआ, वो खड़े हो गया। वो कहे नहीं इनको मत पीटो, हमने चोरी की। तो शिक्षक महोदय ने कहा तुमने चोरी की, निकालो पैसे जो चोरी की। तो उसने दे दी। पूरे कक्षा के जो भी सहपाठी थे सबको बुरा लगा कि चोरी तो इसने की, ये पीटा गया निर्दोष। शिक्षक महोदय ने उनको पूछा, उस बच्चे को, अरे हमने तुमको पूछा कि तुमने चोरी की, तुम चुप क्यों रहे, गलती हो गई हमसे, हम तुम्हें पीटे, आप क्षमा कर दीजिए। शिक्षक महोदय बोल रहे हैं विद्यार्थी से, परंतु हमने पूछा आपको, आपने चोरी की तो आप चुप क्यों रहे। तो विद्यार्थी कहते हैं आपने एक बार पूछा, हमने एक बार उत्तर में कह दिया कि नहीं चोरी की, आपने वापस पूछा। अगर हम इसी वार्ता में व्यस्त होते तो वाणी से नाम छूट जाता। हमारा अभ्यास है कि कक्षा में आए या घर जाए, घर में हो या बाहर हो, दिन हो या रात हो, अखंड हरिनाम मुख से चले। वो बच्चा कहता है शिक्षक को, हमारा साधन है कि अखंड हरिनाम जिह्वा पर चले। आपने एक बार पूछा, हमने एक बार नकार दी, आपने पुनः पूछा, अभी हम इसी में हां ना में अगर चलते तो नाम छूट जाता। हम नहीं चाहते कि नाम छूटे, तो हमारा कर्तव्य, आपने एक बार पूछा हमने नकार दिया, आगे हमारा कर्तव्य है कि उदासीन होकर नाम जपे, और जो प्रभु दे प्रसाद, आप हमें बिठाए या आप हमें पीठे, ये प्रभु का प्रसाद है, ये मानकर हम नाम चले। ये बच्चा आगे जाकर बहुत बड़ा सिद्ध महात्मा बना श्रीपाद वल्लभाचार्य जी के संप्रदाय में। उसी प्रकार गोपाल गुरु गोस्वामी के उदाहरण में हम कह रहे थे, वैष्णव जाते हैं जिह्वा धर के कि नाम चल रहा है, और हम जा रहे हैं शौच क्रिया के लिए, स्थान अपवित्र, नाम परम पवित्र, तो ये उचित नहीं बोल के जिह्वा धर रहे हैं। तो गोपाल जी कहते हैं, छोटा सा बालक गोपाल गुरु बनकर कहता है, अरे आप ऐसे ना समझे कि अपवित्र स्थान में पवित्र नाम का उच्चारण करें तो पवित्र नाम अपवित्र होता है, ना, पवित्र नाम अपवित्र स्थान में करो तो अपवित्र स्थान धाम हो जाता है। प्रत्येक स्थान, प्रत्येक परिस्थिति, प्रत्येक जीव हर समय अखंड हरि नाम जपे, ये सभी शास्त्रों का सार है, सभी वेदों का ये एकमात्र निचोड़ है। इस विषय में श्रील प्रभुपाद जी हम यहां लिखे हैं नोट्स में, नोट्स के विषय में कह रहे थे, श्रील प्रभुपाद जी यहां लिखते हैं, ये चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 8वें अध्याय से है, जब चैतन्य महाप्रभु पूछते रामानंद राय से कि ध्यान करने वाला योग्य विषय कौन सा, तो रामानंद राय कहते हैं प्रभु के नाम रूप गुण लीला के अत्यधिक या इसके अतिरिक्त कोई ध्यान करने योग्य विषय नहीं है। नाम यदि ध्यान करे, नामाक्षर ध्यान करें, जैसे हर परिस्थिति में माला लेके तो बैठ नहीं सकते, इंद्रियों से सेवा भी होती है, परंतु कहने का सार यह है कि सेवा यदि जिह्वा से हरिनाम करते करते करे तो सेवा उत्कृष्ट होती है। हाथों से यदि जैसे भोजन क्रिया की सेवा है तो रोटी बनाते समय या आप जो भी पका रहे हैं, पकाते समय यदि जिह्वा पर हरिनाम हो, अखंड हरिनाम, तो वो सेवा इतनी उत्कृष्ट हो जाती है। गाड़ी चलाते समय हाथ में माला रखना ये उचित नहीं है, उससे शीघ्रातिशीघ्र प्रभु का दर्शन हो जाएगा। तो हम उस बात को नहीं कह रहे हैं, पर गाड़ी दोनों हाथ से स्टीयरिंग चलाते चलाते जिह्वा में तो आप नाम जप सकते हैं, क्यों नाम की विस्मृति हो। इतना सरल नाम, और ऐसा नाम कि अक्षर का भी बिल्कुल विचार नहीं, राम को मरा कर दिया वाल्मीकि हो गए, रत्नाकर डाकू वाल्मीकि हो गए उल्टा नाम जप के, तो सीधा नाम जपने का तो कहना ही क्या फिर। और केवल हम आगे से जपें या पीछे से जपें इसकी बात भी नहीं कह रहे हैं, उच्चारण भी राम का रामा हो जाता है, कई बार राम हो जाता है, कभी रामो हो जाता है, कभी राम रहता है, संस्कृत में राम है, कोई बंगला भक्त हो तो हरे कृष्ण तो कृष्णो रामो हो जाता है, यही कोई दक्षिण भारत का हो तो कृष्णा गोविंदा रामा मुकुंदा माधवा आकार लगता है, हम वहीं के हैं ना तो हम जानते हैं, यही उत्तर भारतीय हो तो अशब्द भी हो तो उसको हलंत बना देता है, जैसे राम शब्द हो तो राम, ममता नाम हो तो ममता, तो मम हो जाता है, राम हो जाता है, दक्षिण भारत में तो रामा हो जाता है, और कई और अन्य देश का हो तो उच्चारण में भी भेद, परंतु प्रभु कितने दयालु, उभयोस्तु समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन, प्रभु ये नहीं देखते हैं कि कैसे उच्चारण हो रहा है। अच्छा, यदि सामर्थ्य हो ठीक से उच्चारण करने का, और यदि फिर हम ठीक से उच्चारण नहीं कर रहे तो ये ठीक नहीं है, हमें आलसी नहीं होना, हमें हर क्षण नाम जपते समय ठीक से उच्चारण करें, ध्यान पूर्वक नाम जपे, अक्षरों का चिंतन करें, जैसे कि कई भक्त नाम जपते जपते हरे कृष्ण महामंत्र के जो 32 अक्षर हैं इसको सामने रखते हैं, नाम देख देख कर, तो नेत्रों से भी नाम चल रहा है, कर्ण इंद्रियों से आप श्रवण कर रहे हैं, जिह्वा से रट रहे हैं, और मन में एक प्रार्थनात्मक भाव है, ये सर्वश्रेष्ठ नाम साधन हुआ। मन पूरा इसमें विचलित हो जाता है क्योंकि हर इंद्रिय से वार हो रहा है, जिह्वा से यदि केवल जप हो और हम श्रवण स्मरण नहीं कर रहे तो होता यह है कि मन कहीं विचरण करता है, कहता है कि आप हाथ से तो भ्रमण कर ही रहे हैं, हम मन से भ्रमण करते हैं, परंतु हर इंद्रिय से यदि वार हो, और ये बहुत कठिन है परंतु इसमें सिद्धि है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ में लिखते हैं, इट इज अ कोलोसल स्ट्रगल। इसका अर्थ यह है कि नाम में सिद्धि प्राप्त करना ये सबकी बस की बात नहीं है। क्यों? सरल तो है पर आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि नाम जपना है, श्रवण करना है, और प्रार्थनात्मक भाव से मन अगर कहीं और घसीट के लिए जा रहा है तो फिर पुनः ध्यान केंद्रित करना है, परंतु करने वाले भक्त बहुत कम है, विरला ही। इसलिए भक्ति का एक विलक्षण लक्षण है, सुदुर्लभा सुदुर्लभा। जानते तो सब हैं, करने वाले कम हैं। हम हमारे विषय में कह रहे हैं, तो नाम भजन के विषय में ये कह रहे हैं कि अक्षर उच्चारण आगे से जपें, पीछे से जपें, अथवा उच्चारण के दृष्टिकोण से भेद हो अथवा व्यवधान हो। शिला सनातन गोस्वामी हरिभक्ति विलास में उदाहरण देते हैं, जैसे कोई राजा महिषी कहे, राजा महिषी का अर्थ है राजा और रानी, परंतु इसको भी, ऐसे व्यक्ति को भी जो राजा महिषी कहता है उसको भी राम नाम जपने का फल है, क्योंकि राजा के पहले अक्षर से रा और महिषी के पहले अक्षर से मां जोड़कर भेद अलग अलग भिन्न भिन्न शब्दों से भिन्न भिन्न अक्षर को जोड़कर प्रभु फल देते हैं। तो यदि कोई म्रियमाणो हरेर नाम घृणन पुत्रो उपचारित अजामिलोप्यगा दाम की मुत श्रद्धया घृणन, मरने वाला व्यक्ति पुकारे और प्रभु आए, तो जीने वाले व्यक्ति जो जीवित होकर पुकारे तो प्रभु क्यों नहीं आएंगे? मरने वाला व्यक्ति पापी होकर पुकारे और प्रभु आए, तो जीवित व्यक्ति चार नियमों का पालन करके प्रभु को पुकारे तो इसमें कहां संदेह है कि प्रभु आएंगे कि नहीं आएंगे? मरने वाला व्यक्ति पुत्र को पुकारता है और प्रभु आते हैं, तो जीवित भक्त चार नियमों का पालन करके आजीवन प्रतिदिन पुत्र को नहीं प्रभु को पुकारे तो यहां कहां संदेह है कि प्रभु आएंगे कि नहीं आएंगे? तो गोपाल गुरु गोस्वामी की कथा में वो कहते हैं कि आप जीवा को धरने की आवश्यकता नहीं, रटो, हर परिस्थिति में नाम जपो। महाप्रभु को जब पता चला, महाप्रभु कहते हैं कि ये गोपाल नहीं है, ये गोपाल गुरु है, पूरे ब्रह्मांड के गुरु हैं ये, जगत गुरु हैं, और आगे जाकर यही गोपाल गुरु गोस्वामी हरिनाम के विषय में भी खूब व्याख्या लिखे। तो हमारा ये लक्ष्य है कि निरंतर हरिनाम हो। भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, इस बात को कोई काट नहीं सकता, गीता की वाणी है। अटल सत्य शिक्षाष्टकम का है, कीर्तनीय सदा हरि। कृष्ण कहते हैं निरंतर नाम जपो, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहते हैं निरंतर हरिनाम करो। अच्छा, हम सब वेश्या समान है, हमने हमारी इंद्रियों से कितनी भोगवृत्ति की इस जगत के जागतिक सुख। अच्छा, इस जीवन में ब्रह्मचारी, पर पिछले जीवन में तो हम गृहस्थ रहे होंगे, उसके पहले गृह मेदी रहे होंगे, उसके पहले दुराचारी रहे होंगे। कोई भी अवस्था में, हर परिस्थिति में कितने जीवन हमने भोग इंद्र तृप्ति करके, वेश्या समान हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर इंद्रियों से भोग वांछा की है। हरिदास ठाकुर ने उस वेश्या को उद्धार के विषय में कहा, निरंतर नाम लो, कर तुलसी सेवन, कि तुलसी की सेवा करो और निरंतर हरि नाम। शब्द चयन कैसे किया देखिए, सततम, सततम का अर्थ सतत, फिर कीर्तनीय सदा हरि, सदा का अर्थ सदा सर्वदा। हरिदास ठाकुर कहते हैं जपना कैसे चाहिए, निरंतर। अच्छा, कुंती देवी क्या कहती है, अभीक्ष्णशः, अभीक्ष्णशः का भी वही, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं, नित्य, नित्यम भागवत सेवया, नित्य शब्द हो, सततम हो, सदा हो, अभीक्ष्णश हो, निरंतर हो, ये बारंबार शब्द प्रयोग क्यों हुआ? हमें ये समझाने के लिए, केवल दो चार माला करके मत छोड़ो, कितने जन्मों के पाप काटने हैं, कितने जन्मों की पाप प्रवृत्ति है, इसको अब उन्मूलित नहीं करेंगे तो कब करेंगे? हरिनाम जीवन में अवतरित हुआ, कली कले नाम रूपे कृष्ण अवतार। रात के समय यदि आप पलंग में, शैया में लेटे हैं, 12:30 बज चुका, आप निद्रा आपका भंग हुआ, आप उठे बीच में, आपको चलो शौच क्रिया हुई, अथवा आप पानी पीने लगे, या आपको ऐसी निद्रा भंग हो गई, चलो आप 12 बजे पलंग में यहां से वहां आप करवट बदल रहे हैं, तभी आप शालिग्राम सेवा कर सकते हैं पलंग में लेटे लेटे? आप कहे नहीं नहीं यहां शालिग्राम ले आओ, हम लेटते लेटते सेवा करेंगे, संभव है? नहीं, भागवत को यहीं खोल के सोते सोते कथा करेंगे, संभव नहीं है। सोते सोते कोई क्रिया हो ही नहीं सकती, क्योंकि पवित्रता नहीं है, परंतु नाम अवतार इतना सुंदर, लेटे लेटे आप उबास ही ले रहे हैं, कृष्णा मिल जाएगा फल। उबासी लेते लेते शालिग्राम सेवा नहीं हो सकती, अशुद्धि है, नहीं हो सकता। कीर्तन की विधि करें तो ठीक नहीं है, क्योंकि एक विधि होती है, परंतु नाम इतने दयालु इतने कृपालु, कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में मासिक धर्म से माताएं यदि युक्त है कोई सेवा नहीं हो सकती, पर नाम अखंड चल सकता है, क्योंकि प्रभु हमारा देह पवित्र अपवित्र देखते ही नहीं है नाम के अवतार में। हमें स्मरण है, एक बार हम हरिनाम संकीर्तन के लिए कहीं विदेश की बात है, रास्ते से कीर्तन हमारा भक्तों की टोली थी, हम चल रहे थे, तो इस पक्ष में मांसाहार चल रहा था और इस पक्ष में मद्यपान, और हमारे जो अध्यक्ष थे उन्होंने कहा यहीं से कीर्तन करना है क्योंकि यहां सबसे ज्यादा रोगी हैं, यहां से सब वैद्यों को बुलाओ यहीं से ले चलो, मनो जो कीर्तन भक्त हैं। तो हम कीर्तन करके जा रहे थे, एक व्यक्ति हमें अभी भी याद है, मुख में गौ मांस और हाथ में मद्यपान अल्कोहल, वो पी रहा है ऐसे और अंदर गौ मांस खा रहा है और इसके बीच में हरे कृष्णा बोल रहा था। हमें लगा कितनी अद्भुत बात है, मद्यपान करने वाला व्यक्ति गौ मांस खाने वाला व्यक्ति प्रभु के निकट आ ही नहीं सकता, मंदिर के गृह में प्रवेश नहीं हो सकता, शुचि अशुचि की बात होती है, और यहां उस जिह्वा में यहां गौ मांस है, यहां मद्यपान है, मद्य है मानो अल्कोहल है शराब है, इसके बीच में प्रभु ने नाम अवतार ग्रहण करके ऐसे बैठ गए, इतने दयालु। द्रौपदी ने पुकारा प्रभु आ गए, गजेंद्र ने पुकारा प्रभु आ गए, प्रहलाद ने नाम पुकारा प्रभु आ गए, स्तंभ तोड़कर आए, ध्रुव ने नाम पुकारा तो प्रभु आ गए, उत्तरा ने किया क्या अपने गर्भ रक्षा हेतु, क्या किया नाम पुकारा, हमें भी उत्तरा बनना है। परीक्षित माने भक्ति, हमारे गर्भ रूपी हृदय में परीक्षित रूपी भक्ति की रक्षा करनी है, कली काल में हर दिशा से ब्रह्मास्त्र चलेगा उस भक्ति को परास्त करने के लिए। हमें करना कैसे, उत्तरा के पद चिन्हों पर चलना है, जिस प्रकार उत्तरा देवी ने पुकारा पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, चार लाइन में तीन हरिनाम, महायोगिन देव देव और जगतपते, प्रार्थना बाद में पहले हरिनाम। उत्तरा के पद चिन्हों पर चल के परीक्षित रूपी भक्ति को यदि बाहरी दृष्टिकोण से परिस्थिति के दृष्टिकोण से ब्रह्मास्त्र रूपी प्रहार हो तो हमें भागना है, प्रभु भक्ति कम हो रही है, हे नाम प्रभु आप रक्षा कीजिए। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रोफेसर स्टैल नामक एक प्रोफेसर थे जिन्होंने प्रभुपाद जी के भगवद गीता पर एक उस विषय में एक पत्र लिखा प्रभुपाद जी को, और लिखा कि भगवद गीता का जो भाषांतर है ये तो उचित है, परंतु भगवद गीता ये सिद्ध बात है कि भगवद गीता में ये निरंतर आप जो माला लेके चल रहे हैं इसका कोई उल्लेख नहीं है। प्रभुपाद जी को उन्होंने पत्र में लिखा प्रोफेसर स्टैल ने कि आपका भगवद गीता भाषांतर तो उचित है, परंतु आपके संस्था के जो ये माला झोली लेके चलते हैं ये गीता में नहीं है। तो प्रभुपाद जी उत्तर देते हैं प्रोफेसर स्टैल को, मुझे लगता है तुमने गीता पढ़ी है पर सततम कीर्तयंतो माम इस श्लोक का तुमने व्याख्या नहीं पढ़ा। प्रभुपा जी फिर पत्र में लिखते हैं, सततम कीर्तयंतो माम का अर्थ है कि निरंतर हरिनाम जपा जाए, हम उसी एक श्लोक का जीवन में व्यक्तिगत रूप से हम उसको उतार रहे हैं। सभी भक्त नाम इसलिए जपते हैं क्योंकि उस श्लोक में प्रभु ने कहा, प्रभुपा जी लिखते हैं। हमारे महाराज जी को एक बार व्यक्ति ने पूछा कि माला झोली 16 माला तो हो गए तो माला झोली लेकर चलने की क्या आवश्यकता, कोई माला जप रहा है कोई कंठ में लेकर चल रहा है ये लेने की क्या आवश्यकता, 16 माला तो हो गया। तो हमारे महाराज जी कहते हैं, कारगिल तो रोज होता नहीं फिर भी सैनिक गन लेके चलता है कि नहीं चलता, चलता है। हम सेना के सैनिक हैं, महाप्रभु की सेना है, माया के विरोध आक्रमण है, कारगिल मृत्यु है, कब होगा वार पता नहीं, विपक्ष का कब वार होगा पता नहीं, परंतु हम सैनिक हैं, रोज तो अभ्यास करेंगे साथ साथ गन लेके ही चलेंगे, और गन की तरह हाथ भी बाहर निकलता है उंगली, और उस गोली को हम गिनते भी हैं लोडेड है कि नहीं। प्रातःकाल उठते उठते 16 तो कम से कम लोड कर देते हैं, कई भक्त तो अधिक भी लोड करते हैं जस्ट टू बी सेफ। तो इस प्रकार माला से हो, कई बार माला नहीं होती, कोई मैनेजमेंट मीटिंग में होते हैं तो माला लेके तो बैठ नहीं सकते, तो प्रभु ने कृपा करके देखो गिनती करने के लिए, गायत्री गिनती और हरिनाम गिनती के लिए प्रभु ने बहुत सुंदर व्यवस्था बनाकर रख दी, उंगलियों में अलग अलग स्थान दिए, तो आप नाम इसमें गिनते गिनते कर सकते हैं। आप मैनेजमेंट मीटिंग में बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखा रहा है जो आपको लग रहा है कि ओहो हो कब खत्म हो। अच्छा, मैं टेंपल मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा, आप गलत दिशा में ना ले जाएं इसको। टेंपल मैनेजमेंट मीटिंग की बात नहीं कर रहा, वो शायद काफी रसिक हो सकता है, मैं नहीं कह रहा कुछ, मैं हमारे दुनिया की बात कर रहा हूं, ग्रेस दुनिया की बात कर रहा हूं, जो कॉरपोरेट मैनेजमेंट मीटिंग होता है या जो हमारे MBA स्कूल में होता है उस विषय में हम कह रहे हैं। तो कई बार एक एक दो दो घंटे का प्रेजेंटेशन होता है, वो ना बैठ सकता है ना उठ सकता है, माँ जीव माँ मर, ना बैठ के सुन भी नहीं सकता और उठ के जा भी नहीं सकता, तभी हरिनाम, तभी ग्रंथ खोल के भागवत पढ़ा नहीं जा सकता, शालिग्राम की सेवा हो नहीं सकती, तब तो देख तो रहे, अंतरे निष्ठा करो बहिर्लोक व्यवहार, बाहर से तो लग रहा है कि हम स्लाइड देख रहे हैं पर यहां गिनती कर सकते हैं। अच्छा, होंठ हिलाने की भी आवश्यकता नहीं, होंठ बंद है अंदर जीवा चल रहा है। एक दक्षिणात्य ब्राह्मण इस्कॉन मंदिर आया और प्रभुपाद जी को कहने लगा कि मंदिर तो आपका बहुत उचित है, बहुत सुंदर है। प्रभुपाद जी ने कहा आपको अच्छी लगी हमारे मंदिर का ये जो प्रयास, आपको अच्छा लगा? तो ये ब्राह्मण कहने लगा, वरिष्ठ पुरुष थे, उन्होंने कहा सब कुछ तो उचित है पर यहाँ हमारे साउथ इंडियन मंदिर में जो घंटी होती है वो नहीं है, घंटी लगा दो यहाँ, आते आते घंटी बजाएंगे। प्रभुपाद जी ने कहा हमारे मंदिर का नियम है कि भक्त अपनी घंटी लाता है खुद। कौन सी घंटी? कहते हर एक भक्त का मुख खोलो तो घंटी रूपी जीवा तो बचती रहती है, और ये सत्य बात है। श्रील प्रभुपाद जी के प्रकट अवस्था में भी अंतिम काल जो था उसमें परम पूज्य भक्तिचारु महाराज लिखते हैं कि प्रभुपाद जी जब चरणामृत मांगने के लिए मुंह खोलते थे तब मैं प्रत्यक्ष देखा हूं कि जिह्वा रूपी घंटी बजती रहती थी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम चैतन्य चरितामृत के अंत लीला के 7वें अध्याय का श्लोक 103 से 108 जहां श्री वल्लभ भट्ट की चर्चा होती है अद्वैत आचार्य से, और कहते हैं कि वैदिक संस्कृति में तो देखा जाता है कि पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती कभी, और हम सब प्रकृति हैं, प्रभु पुरुष हैं, वो हमारे पति हैं, तो ऐसे कैसे कि हम प्रभु का नाम लें? सुनने में तो बड़ा मधुर लगता है, नहीं? अगर नाम जपने की इच्छा ना हो तो ये बहुत सुंदर बात है कि हम सब प्रकृति हैं, प्रभु हमारे पुरुष हैं, पत्नी तो वैदिक संस्कृति में पति का नाम लेती नहीं, तो हम क्यों नाम ले? तो अद्वैत आचार्य ने कहा कि बहुत सुंदर प्रश्न है, आप चैतन्य महाप्रभु से पूछ लो, सीधा आप जाके पूछ लो। तो महाप्रभु ने कहा नहीं, पत्नी पत्नी का कर्तव्य है कि पति का आदेश जो है उसका पालन किया जाए, और पति यदि कहे नाम जपो तो नाम जपो। तो हमारे पति कृष्ण कहते हैं नाम जपो, सततम कीर्तयंतो माम अथवा अनन्या चिंतयंतो माम। तो इसीलिए उन्हीं के बात को हम पूर्ण रूप से जीवन में उतारने का, आत्मसात करने का, उतारने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहां तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमारा कर्तव्य है कि सतत हरि नाम जपे। आगे चौथे स्कंद के 24वें अध्याय का 70वां क्रमांक श्लोक, शिव जी की वार्ता है ये प्राचीन बरही के पुत्रों से, वहां भी तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं देयरफॉर द कंक्लूजन इज वन मस्ट चैंट विदाउट स्टॉपिंग। तो ये बात होनी नहीं चाहिए कि हो गया माला करके, हाँ जो बेर मिनिमम है 16 माला ये तो करना है, उसके साथ साथ खाईते शुईते जथा तथा नाम लो, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि हो। चैतन्य चरितामृत की वाणी है उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते सोते भी नाम जपा जाए। प्रभुपाद नेक्टर नाम का एक ग्रंथ है जिसमें सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज बहुत सुंदर लिखते हैं कि हमारे प्रभुपाद जी सतत हरिनाम कैसे करते थे। वो कहते हैं कि माला झोली हाथ में होती थी और मॉर्निंग वॉक्स में भी हरे कृष्ण 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 बीच में, और फिर कोई प्रश्न हो तो फिर उत्तर, फिर वापस जब प्रश्नोत्तरी ना हो तो हरे कृष्ण प्रभुपाद जी नाम। वैसे कमरे में भी कई बार सत्स्वरूप महाराज कहते हैं हम झक झक कर अंदर देखते थे प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, खिड़की से देखते थे अंदर, कई द्वार खुला होता तो अंदर देखते हैं प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं। कहते कई बार मैं देखा हूं प्रभुपाद जी चलते या बैठते हरिनाम करते थे। कई बार तो अतिथि आते थे मिलने तो वो बात कर रहे हैं और प्रभुपाद जी जप रहे हैं, और प्रभुपाद जी थोड़ा उत्तर देते थे फिर वापस उनको बोलने दे देते थे, फिर वो बात कर रहे हैं और प्रभुपाद जी जप रहे हैं, ऐसे वो लिखते हैं। और कहते हैं कि प्रभुपाद जी ने तो इतना तक आदेश दिया एक बार भक्तों को, जब पंगत बैठी थी और भक्त बैठे थे प्रसाद पाने के लिए, तो भक्त बात करने लगे प्रसाद के बीचों बीच, तो प्रभुपाद जी ने कहा प्रसाद पाते समय बात नहीं करना है, हरिनाम करना है। जिस प्रकार महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में हरि हरि शब्द उच्चारण करके सबको प्रसाद पवाते थे, प्रभुपाद जी का यह नियम था। सत्स्वरूप महाराज लिखते हैं उस ग्रंथ में। तो भक्त ने पूछा प्रभुपाद जी प्रसाद पाते पाते नाम कैसे जपा जाए, तो प्रभुपाद जी ने कहा प्रसाद पाओ उसको आप निगलते समय, फिर जो समय होगा तब एक महामंत्र बोलकर फिर वापस। कई भक्त तो मैं जानता हूं वो आयुर्वेद अनुसार 16 बार या 32 बार चबाकर फिर निगलना होता है, तो भक्त क्या करते हैं मैं जानता हूं ऐसे भक्तों को, वो प्रसाद लेते हैं मुख में रख के फिर चल रहा है हरे कृष्णा मन में चल रहा है, और ये बाहर से तो लग रहा है चबा रहे हैं आस्वादन कर रहे हैं, हां प्रसाद का नहीं हरिनाम का। तो इस प्रकार कई ऐसे भक्त हैं। मंदिर में भी देखिए सेवा करना जो मंत्र है, मंत्र पूर्ण नहीं होगा जब तक हरिनाम ना हो उसमें। गायत्री मंत्र भी देख लीजिए उसमें हरिनाम की उपस्थिति है। वो साधु साधु नहीं है अगर वो हरिनाम ना करे, उनके संग में आकर आपका हरिनाम यदि वर्धन ना हो वो साधु नहीं है। वो केवल आपको इस जगत के मनोरंजन चुटकुले सुना रहा है या जागतिक जो प्रापंचिक बातें हैं वो फुसलाकर आपको भेज रहा है, ये साधु नहीं है। साधु वो है जो आपको उठाता है जगाता है उत्तिष्ठता है जागृत है प्राप्य वरान निबोधता कि अभी समय है जिब्वा से हरिनाम ले लो। वो धाम धाम नहीं जहां कृष्ण नाम राधा नाम उच्चारण ना हो। तो जो भी हमारे अलग अलग साधन है, भागवत श्रवण है उसमें भी हरिनाम होता है, साधु संघ है उसमें भी हरिनाम होता है, मथुरा वास है उसमें भी हरिनाम होता है, श्रीमूर्ति श्रद्धया सेवा उसमें भी हरिनाम होता है, और हरिनाम सर्वसिद्ध। हरिनाम करने में साधु आ जाएंगे अपने आप, हरिनाम करने पे विग्रह प्रकट हो जाते हैं, हरिनाम करने पर भागवत सुनाई देता है क्योंकि कोई तो साधु आकर आपको हरि कथा सुनाएगा, और जहां हरिनाम होता है प्रभु वहां प्रकट होते हैं, वही धाम है। तो इस प्रकार जिस प्रकार कोई कुंभार मटके से काम करता है, हाथ अलग दिशा में चल, जो चक्र है अलग दिशा में चलती है, हाथ अलग दिशा में चलता है और मटके का जो आकार है वो अलग दिशा से होता है, उस प्रकार जीवन में दुनिया के काम करते रहो हरे कृष्ण जपते रहो ऐसे चलना चाहिए। इंद्रिय चल रही है सेवा में और मुख में हरिनाम चल रहा है, ये अभ्यास। माला से हो तो उत्तम, ना हो तो भक्त काउंटर का प्रयोग करते हैं, अच्छा वो ना हो तो उंगली से, वो ना हो तो जिब्वा से, अच्छा वो भी ना हो होठ बंद अंदर जिब्वा, अच्छा वो भी ना हो तो मन में। मन में कैसे, कोई व्यक्ति आपसे आके बात कर रहा है और आपको वहां से बचना है, कई बार होता है नहीं परिस्थिति में कोई आके पकड़ लेता है और क्या करे तो करे क्या, कई बार वरिष्ठ हैं हम बोल भी नहीं सकते कुछ, हाँ यस प्रभु जी करना पड़ता है तो करे क्या। बहुत सरल साधन, उनके मस्तक में उनके ललाट में देखो और वो बात कर रहे हैं, आप नेत्रों से वहां नाम लिखो, एक प्रिय नाम पकड़ लो हरि या राम, छोटा सा अक्षर वाला राम, चलो राम है बहुत सुंदर है, राम में सब कुछ है, बलराम है परशुराम है सीताराम है राधा रमन है सब है राम नाम में। तो कोई आपसे बात कर रहा है आप वहां ललाट पटले आपसे बहुत सुंदर, तो आप नेत्रों से हां हां कर रहे हैं, हां बहुत सुंदर, अलग अलग रंगों से लिखो, कभी लाल से राम लिखे फिर कभी नीले से लिखे कभी पीले से लिखे, तब तक उनकी वाणी हो जाएगी, फिर आप पूछो अच्छा प्रभु जी बताएं और बताएं, फिर बस खत्म आप। और ये हम हमारी बात नहीं कर रहे हैं, बृहद भागवतामृत में सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि नाम इतना सर्वसिद्ध है केवल जिह्वा से नहीं नेत्रों से भी लिया जा सकता है, नाम उच्चारण जिभा से हो सकता है, नाम उच्चारण स्पर्श इंद्रिय से हो सकता है। जैसे कई बार कार्विंग नहीं करते भक्त, कई बार कृष्ण ना हरे कृष्ण महामंत्र कार्विंग, तो आप ब्रेल की तरह ऐसे कभी भी समय हो आप ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, अपने उंगली में लिख सकते हैं। कई बार इसको पेन बना दीजिए, इसको स्लेट बना दीजिए और यहां लिखते रहिए, यहां र आ म राम चल रहा है, कोई बात कर रहा है, आप ललाट में भी लिख रहे हैं, उंगली में भी लिख रहे हैं, नाम चल रहा है। बृहद भागवतामृत में सनातन गोस्वामी इस विषय में लिखते हैं कि सभी इंद्रियों से नाम का प्रवेश हो, आंखों से, स्पर्श से। अच्छा, कई बार हरिनाम जप कर जो प्रसादी माला होता है वो सूंघते हैं तो उससे भी हरिनाम का फल है, फिर कानों से तो है ही और जिह्वा से है। इस प्रकार हरिनाम को सर्व समर्थ मानकर, हमारे इष्ट मानकर हम समर्पित हो, बस यही हमारा जीवन का सार है। इसलिए नामानि अनंतस्य एषो अंकितानि यत्। यदि हम भागवत पढ़ें और नाम के प्रति प्रीति ना हो तो हम ठीक से पढ़े नहीं हैं, और यदि नाम में प्रीति हो और फिर भागवत सुन रहे हैं, अपने आप स्वयमेव स्फुरत्यदा हृदय में खुलने लगेगा। तो कहने का सार, कहने के लिए तो बहुत कुछ कह सकते हैं, समय कम है, परंतु कहने के लिए सारांश में हम यही कहेंगे, श्रील प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत के अंतलीला के तीसरे अध्याय में लिखा, वन शुड चैंट हरे कृष्णा विदाउट स्टॉपेज, टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती में प्रभुपाद जी लिखते हैं, रूप गोस्वामी फॉलोड थ्री प्रिंसिपल्स, अव्यर्थ कालत्वम माने कभी समय वृथा न गवाना, नाम गाने सदा रुचि माने उसको नाम से भरना, और तुंडे तांडी विनी रतिम एक जिह्वा से नहीं करोड़ों जिह्वा से करना। फिर श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला चैप्टर 22 टेक्स्ट 113, वहां प्रभुपाद जी पोर्पोर्ट में लिखते हैं, स्मर्तव्यम सततम विष्णु, उस श्लोक की व्याख्या में, रिमेंबरिंग कृष्णा कॉन्स्टेंटली इज पॉसिबल वेन वन चैंट हरे कृष्ण मंत्र, देयरफॉर वन मस्ट स्ट्रिक्टली चैंट द हरे कृष्ण महामंत्र 24 आवर्स डेली। इसका अर्थ यह है कि नाम का प्राधान्य कभी ना छूटे। फिर प्रभुपाद जी कैंटो 7 चैप्टर 5 टेक्स्ट 23-24 पोरपोट, प्रभुपाद जी उल्लेख करते हैं नाम कौमुदी नामक ग्रंथ का, और कहते हैं नाम अपराध से रहित होना, नाम अपराध से मुक्त होने का साधन क्या है, निरंतर हरिनाम करना। भूमौ स्खलित पादानाम भूमि रेवाव लंबनम नाम जात अपराधानाम त्वमेव शरणम प्रभु। जिस प्रकार व्यक्ति घिर जाता है जमीन पर, भूमि पर, तो उठता कैसे है, उसी भूमि को धर के, उसी प्रकार जो नाम के साधन में घिर चुका वो नाम को ही धरकर उठ सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है, वैष्णव वैष्णवी वृंद जो आज उपस्थित हैं, आप सबके चरणों में हम भीख मांग रहे हैं। हमारा यही एकमात्र, पूरे एक घंटे का जो भाषण था इसका एकमात्र सार है कि हर क्षण में हरि नाम चले। वो कैसे चले वो आप देखिए, कभी माला से, सेवा हो तो माला लेकर नहीं बैठना है, तभी तभी सेवा करनी है, क्योंकि सेवा अधिकार दिए करो नी जद असी, नाम को पूछते हैं कि सेवा दो और सेवा आए तब नाम लेके बैठे, ऐसा नहीं नाम कर रहे हैं और सेवा आए तो उसको स्वीकारें, मुख में नाम हाथ से सेवा, अर्थ कमाने के लिए काम और परमार्थ कमाने के लिए नाम, ये हमारा जीवन का लक्ष्य है। हर परिस्थिति, कभी काउंटर से, कभी उंगली से, कभी माला से, कभी होठों से, कभी जिह्वा से, कभी मन से, कभी नेत्रों से, ललाट में देख के नाम लिख रहे हैं, बहुत सुंदर साधन। हर क्षण, हर दिन की बात नहीं कर रहे हैं, हर क्षण नाम के साथ चले, और यदि ये हो अभय पद प्राप्ति हो सकती है, प्रभु की प्राप्ति होती है। नाम करने वाले व्यक्ति नामी को अधीन करते हैं, ये सत्य बात है। प्रभु पतंग के समान है और नाम दोरी के समान है। मकर संक्रांति में जो पतंग के खेल खेले हैं आप जानते हैं, इस उदाहरण से प्रभु पतंग है, नाम दोरी है। जितना आप नाम खींचो उतना ही पतंग आपके निकट आता है, और यदि इस दोरी को आप छोड़ दो तो उतना ही पतंग दूर चला जाता है, और यदि इस काम को आप बिल्कुल छोड़ दो, हरिनाम बंद कर दो, काट दो दोरी को, तो संबंध तो शाश्वत है पर उसकी विस्मृति हो जाती है, पतंग कहीं और दोरी केवल हाथ में। हमें यह नहीं करना, दोरी रूपी हरिनाम को खींचते रहना है अपने प्रति, ताकि नामी जो पतंग स्वरूप है वो हमारे निकट आ जाए। ये हरिनाम सबसे सर्वश्रेष्ठ हमारा मित्र है। स गुरु स पिता चापि सा माता बांधवोपि सा शिक्षयेच्चे सदा स्मर्तुम हरेर्नामैव केवलम। वही पिता है, वही माता है, वही बंधु है, वही गुरु है जो हमें ये शिक्षा देते हैं कि सदा हरिनाम का स्मरण करो। मृत्यु के समय कोई पास नहीं होता। कई बार हमारा विचार होता है मरते समय वैष्णव होंगे आसपास, मेरे लिए कीर्तन करेंगे, कोई माला देंगे, कोई चंदन डालेंगे, कोई तुलसी, कोई गंगा, ये विचार करते हैं कभी। कोविड आ जाए तो मास्क पहन के भी कोई नहीं आएगा, डर लगता है, कहेंगे हाँ आप अपने आप हाँ पलंग में ठीक हो, हम प्रार्थना कर रहे हैं, जूम कॉल करेंगे आपके लिए, पर प्रत्यक्ष आ नहीं सकते। ऐसी परिस्थिति में हम अकेले हो गए, और यदि सब आ भी गए, मन हमारा कहां होगा पता नहीं, इंद्रियां बंद हो रही हैं। प्रिय भक्तों, ये एकमात्र अटल सत्य है कि यदि हरिनाम हमारे निकट हो तो सब कुछ प्राप्त है, और हरिनाम हम विस्मृति कर दिए तो मानव शरीर प्राप्त करके भी साध्य खो गया। तो इसलिए उसका अभ्यास, उस मृत्यु काल परिस्थिति परीक्षा का अभ्यास आज से, अब से प्रारंभ होता है। सभी शास्त्रों का, सभी वेदों का सार है हरिनाम, और उठते बैठते सब कर सकते हैं, अधिक से अधिक हरिनाम कर सकते हैं। एक अंतिम बात कह के हम विश्राम देंगे। कहने के लिए बहुत आनंद आता है हरिनाम की महिमा, समय लेकिन कम है, कहीं आगे कभी प्रभु कोई हम सब की परिस्थिति बना दें तो फिर कभी आगे वाणी करेंगे। पर एक अंतिम बात कहनी थी। एक बार गौड़िया मठ की बात है, प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर विषय, प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर के कथा के विषय में बात है। गौड़िया मठ में एक भक्त कीर्तन कर रहे थे तो लंबी लंबी आलाप ले रहे थे। ये कीर्तन में जो आलाप होता है कई बार, ये वैदिक नहीं है, जो लंबी लंबी आलाप कई बार सुनने में आता है। तो वो भक्त वहां हारमोनियम या ढोल मृदंग लेकर हरे कृष्ण ऐसे करके लंबा आलाप खींच रहे थे। सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद नीचे आए, बोले कि इन दैट टाइम यू कुड हैव फिल्ड सो मेनी नेम्स ऑफ कृष्णा। उस आ करने में कितने नाम आप भर सकते थे, तो फटाफट नाम जपो, कीर्तन करो ठीक से, ये आकार की कोई आवश्यकता नहीं है। वो बोले बोले वो हाँ कर रहे हैं, उसमें तुम हरे कृष्ण 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 कर सकते हो, नाम जपो प्रभु का। हाँ शास्त्रीय संगीत में आलापचारी ठीक है, पर यहां हम राग तो ठीक है, पर ये राग से ज्यादा अनुराग की भूमि है, अनुराग का स्तर है। तो इसलिए अधिक से अधिक हरिनाम, ज्यादा से ज्यादा हरिनाम, हमेशा माला झोली हाथ में रहे। इसलिए वो दोरी भी ऐसी है ताकि कंठ में रहे, क्योंकि उसको निकाल के हम कहीं किले में लगा दे तो भूल जाएंगे। कई बार भक्त 16 माला हो गए तो किले में लगा देते हैं, अब कल आपको देखेंगे, पुढ़चा वर्षी लौकरिया करके आपको लगा देते हैं वहां किले में, गणपति मानकर विसर्जन कर देते हैं उस दिन के लिए। पर माला झोली यहीं पे हो तो स्मृति होती है, हाँ ठीक है नाम जपना है। तो ऐसे आप सबसे, हम तो कुछ कह नहीं सकते, ये केवल हम भीख मांग रहे हैं, बस भीख ही शब्द ठीक है, याचना कर रहे हैं कि जितना हो सके आप माला अधिक कीजिए। यदि आप 16 कर रहे हैं तो आज से 17 कीजिए, उसको प्रेम माला कहते हैं, क्योंकि 16 तो करना है, 7वां करने की आवश्यकता, 17वां करने की आवश्यकता नहीं है, पर आप प्रेम से कर रहे हैं तो वो प्रेम माला है, वो प्रेम माला बढ़ा दीजिए जब भी समय हो। अच्छा किन्हीं को ले जा रहे हैं आप वृंदावन फॉरेस्ट, तो भक्त आने के लिए 5 मिनट है, माला कीजिए। दर्शनार्थी खुलने के लिए 5 मिनट है, एक माला कीजिए। आप बस के लिए रुके हैं, बस आने के लिए 5 मिनट, एक माला कीजिए। अच्छा बस में जाने के लिए 30 मिनट की यात्रा है, सोचिए 30 मिनट मानो 5-6 माला तो कर सकते हैं। समय और माला, ये चिंतन चलना चाहिए, और अधिक से अधिक माला इसलिए गिनती है कि कल कितना किए उससे एक ज्यादा आज, और कम हो गया तो फिर तद विस्मरणे न परम व्याकुलते थे, नारद भक्ति सूत्र, कि प्रभु के नाम की विस्मृति हुई तो परम व्याकुलता है, क्या हो गया, नाम की गणना कम हो गई। और किन्हीं से कहना नहीं, अरे हम तो 32 माला करते हैं, हम 64 माला करते हैं, ऐसा नहीं। कोई पूछे, मुझे याद है अमेरिका में एक भक्त, वो प्रतिदिन 64 माला करते हैं, तो रात में 2-3 माला बज गई थी, वो कर रहे थे 9:30-10 बजे की बात है। तो एक नया भक्त था जो भक्ति वृक्षा अभी आने लगा, तो इन भक्त को पूछता है, प्रभु जी यू आर नॉट फिनिश्ड योर राउंड्स, आपने आज माला नहीं की।
हम होते तो कहते हैं हम तो 64 माला वाले हैं, पर वो भक्त इतने दीन ही नकिंचन, वो कहने लगे आप प्रार्थना कीजिए, 2-3 माला और बचा है। तो सामने से व्यक्ति पूछता है, ओनली 13 राउंड्स, 3 माला बाकी, मतलब आपने केवल 13 माला किया है। तो ये भक्त कहते हैं हाँ केवल 13 माला हुआ आज, आप प्रार्थना कीजिए मेरे लिए। तो सीख मिलती है अधिक से अधिक हरि नाम, सेवा करते करते मुख में हरि नाम। हम ये कथा से सार नहीं कह रहे कि हमेशा माला लेकर सेवा छोड़कर, ऐसा नहीं कह रहे हैं। आप करते रहिए, जो व्यवसाय करना है कीजिए, पर हरि नाम को रखते रखते कीजिए ताकि उसकी क्वालिटी बढ़े, प्रभु की विस्मृति ना हो। हरि नाम प्रभु की, श्रील प्रभुपाद जी की गौर प्रेमानंदे हरि हरि। समय ज्यादा हो गया नहीं, 15 मिनट ज्यादा ठीक है।
हरे कृष्णा। तो श्रीमान अमरेंद्र प्रभु, इतने सुंदर उदाहरणों से हमको हरि नाम की महिमा सुनाए। कारगिल का उदाहरण है, कुमार का उदाहरण है, सब चक्र घूम रहे, लेकिन हमारी मति हरि नाम में है। तो इतने सारे उदाहरण हैं जो पहली बार मैंने सुने। तो हम अमरेंद्र प्रभु उनका धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि हरि नाम के बारे में हमको सुनाया, 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय श्री प्रभुपाद की जय।
आप सब माला बढ़ाएंगे ना, क्योंकि फिर ही फल हुआ कथा का।
नहीं नहीं तो प्रभु जी हमारे सर पे लिखना चालू कर देंगे।